संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र करते हैं। हरी सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। प्रथम श्रोता आप हैं श्री राधे श्याम सीताराम, दूजो हैं रसखान। आपके सभी भक्तों संतों के चरणों में प्रणाम। भक्तमाल के सभी भक्तों संतों को प्रणाम। सभी भक्तों और वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। श्री राधे श्याम सीताराम। हरिओम। रामानंदाचार्य जी भगवान श्री राम जी के अवतार हुए हैं, और भगवान श्री राम जी ने ये अवतार क्यों लिया, इसका कारण है कि भगवान श्री राम जी तपस्वी बन के क्यों आए कलयुग में। त्रेता में जब भगवान राम जी ने देखा कि भरत जी ने क्या कठोर तप किया था, राम जी के वनवास जाने के बाद उन्हें पता था कि भगवान धरती पे सोते हैं, तो उन्होंने नीचे धरती के भी नीचे खोद के वो सो रहे थे। इतना त्याग था उनका। 14 साल तक भगवान ने अगर राज नहीं देखा तो उन्होंने भी राज का मुख नहीं देखा। तो इतनी जितनी भगवान श्री राम जी की नहीं, उनकी इतनी कठोर तपस्या थी। अच्छा, उसी कठोर तपस्या के बदले में भगवान चाहते थे कि अगर मेरे भाई भरत ने ऐसी तपस्या की है तो मैं भी तपस्वी बन के ही अवतार लूँगा, और जग कल्याण के लिए भी भगवान इस रूप में आए। और इसके पीछे की जो और कथाएँ हैं कि भगवान इस अवतार में, एक बार काशी में यवनों का, क्योंकि मुगलों का बहुत बड़ा अत्याचार रहा ही है, तो काशी में यवनों ने बहुत अत्याचार कर रखे थे। एक परिवार पे तो ऐसा हुआ कि उनके परिवार में कोई नहीं बचा, घर में कोई स्त्री पुरुष नहीं बचा, 14 साल का एक लड़का बचा सिर्फ। तो वो बालक 14 साल का, उसके मन में इतना नैराश्य हुआ कि क्या भगवान कभी मदद नहीं कर सकता हमारी, ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं हम पे। वो जंगल में गया और उसने लोक कल्याण के लिए तप किया, उसने घोर तपस्या की 14 साल की लड़के ने। ये कलयुग में ही अभी की बात है, जब मतलब 1100 ईस्वी की बात है। तो उसने कठिन तपस्या, घोर तपस्या करके उसको भगवान की वाणी सुनाई दी, और उसका शरीर त्याग हुआ, उसका तो उद्धार हुआ ही। कि उसने भगवान राम के लिए प्रार्थना करी थी कि राम नहीं आएंगे क्या उद्धार करने के लिए, जब उन्होंने इतने राक्षसों को मारा है, और जहाँ पर भी जब भी उनकी पुकार हुई है, क्या वो उद्धार करने नहीं आएंगे हमारा। तो आशीर्वाद मिला कि भगवान राम आएंगे, वाणी सुनाई दी उन्होंने कि भगवान श्री राम आएंगे और वो उद्धार करेंगे। तो और उनका कल्याण हुआ, उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उससे पहले कलयुग में ही एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उन्होंने बद्री का आश्रम में भगवान के लिए उन्होंने भी कठोर तप किया था। भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने वर मांगा कि हमें भगवान राम प्राप्त हो, मतलब भगवान नारायण जो है हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो आशीर्वाद मिला कि अगले जन्म में तुम्हें भगवान पुत्र रूप में ही प्राप्त होंगे। तो वही अब जो ब्राह्मणी है, सुशीला नाम है उनका इस जन्म में, और जो पिता हैं उनका, उनके जो पति हैं उनका नाम पुण्य सदन है, और ये वैसे ही भक्त हैं अभी भगवान नारायण के, भगवान नारायण की उपासना करते हैं। तो बहुत काल से भगवान की उपासना कर रहे हैं, और इनको पुत्र चाहिए, अभी पुत्र के लिए बड़े लालायित हैं कि हमें पुत्र मिले। तो एक दिन ये भगवान नारायण की उपासना कर रहे थे, और भगवान नारायण की उपासना करते हुए भगवान नारायण के गले से माला गिरी, और इन्होंने माला भगवान ने अर्पण की, जैसे माला भगवान के हाथ से शंख इनको मिला, दक्षिणावर्त शंख था, शंख दिया भगवान ने, और भगवान के विग्रह से आवाज़ आई कि मैं ही स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में आ रहा हूँ। शंख और माला देकर के भगवान ने ये कहा। तो ये बड़ा इन्होंने आश्चर्य हुआ कि भगवान स्वयं मेरे पुत्र रूप में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म की इनकी वो थी कि इन्होंने तपस्या की थी कि भगवान पुत्र रूप में मांगे, तो अभी तो इन्हें ऐसा सोचा भी नहीं था कि भगवान आ जाएंगे पुत्र रूप में। अपनी पति पुण्य सदन जी से ये बात बताई, वो भी बड़े आह्लादित हो गए कि भाई पुत्र रूप में भगवान आ रहे हैं। ऐसा ही हुआ कि अगले साल ही पुत्र रूप में भगवान 1256 विक्रम संवत में, यानी 1200 ईस्वी में भगवान का जन्म हुआ। तो रामानंदाचार्य जी के रूप में भगवान प्रकट हुए, भगवान आए। प्रकट इसलिए बोल रहे हैं प्रकट हुए, भगवान योनिज नहीं होते हैं, अयोनिज होते हैं, योनिद्वार से उत्पन्न नहीं होते हैं भगवान, वो प्रकट ही होते हैं जिस भी अवतार में आते हैं। तो वो ऐसी लीला कर देते हैं कि जिस टाइम उनका मतलब जन्म होने का होता है तो माता भी और आसपास के लोग बेहोशी में चले जाते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। और प्रकट की आगे भी आएगी कैसे फिर प्रकट हुए भगवान। तो रामानंद चार्य जी प्रकट हुए, इनका नाम रखा रामदत्त। जब इनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ, अन्न देते हैं जिस टाइम, तो माता ने बहुत सारे पकवान बनाए हुए थे, 6 महीने का जब हो जाते हैं तो अन्न देते हैं, तो उस टाइम इन्होंने सिर्फ खीर का भोग लगाया और इन्होंने आजीवन खीर ही खाई और कुछ नहीं, किसी पकवान को इन्होंने 6 महीने भी छुआ नहीं इन्होंने, तो सिर्फ खीर खाई थी इन्होंने, खीर ही खाते रहे। फिर जब ये 4 साल के हो गए तो एक दिन जो वो शंख भगवान का दिया हुआ शंख था इनका, श्री विग्रह का भगवान के दिया हुआ शंख था दक्षिणावर्त, वो शंख पूजा घर में रखते थे अपने। तो एक दिन ये जब 4 साल के थे, इन्होंने वो शंख उठाया और फूंक दिया, बजा दिया, और वो शंख की वो दिव्य ध्वनि हुई जैसे भगवान नारायण स्वयं शंख बजा रहे हो, दिव्य ध्वनि। पहले तो इनके पिताजी आह्लादित हो गए वो शंख ध्वनि सुन करके, ओह क्या ध्वनि हुई है। पर जैसे ही उन्हें फिर ज्ञान हुआ, शंख इन्होंने रखा कि तुमने क्या कर दिया, भगवान के शंख को फूंक दिया तुमने, ये तो पूजा का भगवान का शंख था, इसको छूना भी नहीं था। और इनके मन में बड़ा हुआ आया, ये बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्षमा करना बालक है भगवान, क्षमा करना इसको बालक है भगवान, क्षमा करना। रात में भगवान ने स्वप्न दिया कि तेरे बालक रूप में हम ही हैं ये समझो तुम, तो उसको वो शंख दे दो और बजाने दो उसको। तो फिर इन्होंने सहर्ष वो शंख जो है उनको बालक को दे दिया रामदत्त जी को, और रामदत्त जी फिर दिन में 4 बार वो शंख बजाते थे, और जब जब बजाते थे जो भी पड़ोसी जहाँ जहाँ तक शंख ध्वनि जाती थी सब आह्लादित होते थे, आनंद विभोर हो जाते थे सब वो शंख ध्वनि सुन करके। तो शंख बजाने शुरू हुआ। 7वें साल की अवस्था में जब ये 7 वर्ष के थे तो प्रयागराज में कुंभ था, कुंभ में बड़े बड़े संत और विद्वान लोग आए हुए थे, सबके बीच में 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया था सबके सामने ऐसे ही, तो वो सुनकर के और उपदेश दिए सबको, भागवत धर्म के उपदेश दिए। 7 वर्ष की उम्र में एक बालक से उपदेश और वाल्मीकि रामायण सुन करके सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, ये तो कोई दिव्य बालक है। 8वें वर्ष की अवस्था में ये हुआ कि इनका उपनयन संस्कार हुआ कि भाई शिक्षा के लिए ये जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जाने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने सैविधि करके इनको दिया कि ठीक है अब आप यहाँ वहाँ तक जाइए। तो ये जब वहाँ से चले बोला हाँ आप वापस लौट आइए, शिक्षा का हो गया, तो बोले ऐसे नहीं हम आएंगे, हम झूठा संस्कार नहीं करेंगे, हमने अगर ये झोला उठा लिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो हम काशी जी पढ़ने के लिए ही जाएंगे। माता पिता ने ब्राह्मण ने सब ने रोका, ये तो एक संस्कार, बोला नहीं नहीं संस्कार है तो झूठा नहीं करेंगे, सत्य ही करके आएंगे, हम जा रहे हैं काशी जी पढ़ने के लिए, हम पहले पढ़ के आएंगे। फिर माता पिता इनके बिना रह नहीं सकते थे, जैसे दशरथ जी की और कौशल्या जी की, जैसे दशरथ जी की हालत थी ना राम को नहीं छोड़ सकते थे, इनकी भी वही हालत थी। ये फिर काशी जी अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुके इनके माता पिता, क्योंकि नित्य दर्शन हो जाए भाई, दर्शन हो जाए। तो इन्होंने वहाँ पे अपना बहुत शीघ्र ही इन्होंने सारा वेद अध्ययन कर लिया है, सब वेद पुराणों को सबको अध्ययन करके पारंगत हो गए हैं, और छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपने इनके पिताजी को लग गया कि ये तो सन्यासी बनेंगे। तो इन्होंने माधवी नाम की एक कन्या से, ब्राह्मण की कन्या थी, उससे इनका रिश्ता तय कर दिया, विवाह तय हो गया। इनको पता चला कि माधवी के साथ विवाह मेरा तय कर दिया गया, इन्होंने अपने पिताजी से कहा हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी की का व्रत ले चुके हैं, हम ब्रह्मचारी रहेंगे और हम विवाह नहीं करेंगे। इनके पिताजी तो रोने लगे, देख करके ऐसा कैसा हो सकता है। तो उधर रात में माधवी को स्वप्न हुआ, उसमें स्वप्न में भगवान नारायण आए, भगवान नारायण ने स्वप्न में माधवी को कहा कि तुम उससे विवाह नहीं कर सकते, तुम जाओ गुरु बनाओ उन्हें, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो स्वप्न उन्होंने अपने पिताजी को बताया सुबह उठ करके, उनके पिताजी ने कहा कि भगवान नारायण ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए तो चलो। तो सब परिवार को लेकर माधवी इनके यहाँ पर आई, वहाँ पर आए और उन्होंने सबको बोला कि मैं तो इनको गुरु बनाना चाहती हूँ। तो रामानंदाचार्य जी उस टाइम खुद उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था, तो लेकिन इनके गुरु कुल के गुरु थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपना शंख फूका, जो वो बोली कि मुझे आप मंत्र दीक्षा दीजिए, तो जैसे ही इन्होंने अपने शंख बजाते थे शंख फूका, शंख की वो दिव्य ध्वनि हुई कि माधवी की समाधि लग गई। माधवी की ऐसी समाधि लगी कि समाधि में ही उसको भगवान नारायण के दर्शन हुए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर उनको गुरु मंत्र दिया, भगवान नारायण ने समाधि में इनकी शंख ध्वनि से। तो भगवान नारायण ने प्रकट होकर समाधि में इनको गुरु मंत्र की दीक्षा दी, गुरु मंत्र की दीक्षा देके उनको जैसे ही उनका बाहर आई, वो समाधि से बाहर आई, उन्होंने सबके सामने कह दिया कि मेरा उद्धार हो गया है, मुझे तो साक्षात्कार हो गया शंख ध्वनि से, मेरी तो समाधि लग गई, भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं और वो ही गुरु रूप में मिले हैं भगवान नारायण ही। ऐसा कर कह के उन्होंने ब्रह्मरंध्र से ध्यान करके सीधे अपने देह छोड़ दी कि मैं तो जा रही हूँ भगवान के लोक, ऐसे कह के उन्होंने देह छोड़ दी। ये घटना वहाँ इनके माता पिता ने, जो इनके वो आए थे माधवी के पिता, वो और लोगों ने देखी, सब चकित, एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा दी, तो सब जिद करने लगे हमें भी भगवत प्राप्ति करा दो, हमें भी दीक्षा दे दो, हमें भी दे दो। इवन इनके माता पिता भी, इनके माता पिता भी कहने लगे कि हमें शिष्य बना लीजिए। अब माता पिता को शिष्य बना ले तो ये तो ठीक नहीं था। तो यहाँ से रामानंदाचार्य जी सबके बीच में खड़े हुए अंतर ध्यान हो गए, ऐसे खड़े खड़े अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो सबको लगा जैसे कि है नहीं, सबके बीच में नहीं है, तो माता पिता को हृदय निकल गया, जैसे भगवान ढूंढने लगे कहाँ गए, बेचैन हो गए, जैसे दशरथ जी बेचैन हो गए। उस बेचैनी में दोनों को, माता और पिता को, दोनों को मूर्छा आ गई। मूर्छा आई तो वो जैसे ही गिरे तो मूर्छा में उन्होंने सीधे दर्शन हुए साकेत धाम के, भगवान श्री राम जी का साकेत धाम दिखाई दिया और सिंहासन पर बैठे हुए रामदत्त जी, भगवान राम जी जहाँ जैसे बैठे हैं, और वो राम वेश में भगवान बैठे हुए हैं। रामदत्त जी अपने पुत्र को देखा सिंहासन पर बैठे हुए, और उनकी पूरा परिकर, राम जी का जो पूरा परिकर है उनकी सेवा कर रहा है, और वो देख के तत्परप मेरा पुत्र राम है, उन्हें देखा। जैसे ही उनकी मूर्छा टूटी वापस वो आए, और फिर वो व्याकुल हो गए, वो भूल गए कि वो राम है स्वयं, और वो इतने व्याकुल अपने पुत्र वियोग में इतने व्याकुल हुए कि दशरथ जी की तरह उन्होंने अपनी देह त्याग दी, देह छोड़ दी उन्होंने, इतनी व्याकुलता हुई जैसे दशरथ जी को हुई, और वो चले गए, वो भी भगवत धाम पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर अभी भी रामानंदाचार्य जी प्रकट नहीं हुए। जैसे गोपियों के बीच से भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए थे और गोपियों ने विरह में जो उनकी स्तुति की थी, उसी तरीके से सब लोग मिलकर यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, क्या मतलब क्या करें हम कि भगवान यहाँ पे वापस आ जाएं, तो उनका प्राकट्य कैसे हो, तो प्राकट्य के लिए हम अगले पार्ट पे जाएंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे रामानंदाचार्य जी प्रकट होते हैं, कैसे गुरु दीक्षा लेकर के वो फिर भगवान शिव से कैसे मिलते हैं, भगवान शिव प्रकट होते हैं, वो विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, अगले पार्ट में देखते हैं, सुनते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।